पहला तीमोथियुस अध्याय एक। पौलुस की ओर से, जो हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर और हमारी आशा मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमोथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा बेटा है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुम्हें असीम कृपा, दया और शांति मिलती रहे। मैंने मक्की दुनिया जाते समय तुम्हें समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दो कि वे दूसरी कोई शिक्षा न सिखाएं। उन ऐसी झूठी कहानियों और अनगिनत वंशावलियों पर अपना ध्यान न लगाएं जिनसे झगड़े होते हैं, जो परमेश्वर की उस योजना के अनुसार नहीं है जो विश्वास से संबंध रखती है। आज्ञा का मकसद ये है कि शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कई लोग फिरकर बेकार की बातों में भटक गए हैं। वे धार्मिक शिक्षक तो बनना चाहते हैं, परंतु जो बातें कहते और जिन पर जोर डालकर बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि यदि कोई नियम शास्त्र को सही तरीके से काम में लाए तो यह भला है। ये जानकर कि नियम शास्त्र विश्वासी के लिए नहीं, परंतु अधर्मियों, मनमाना आचरण करने वालों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध लोगों, माँ बाप की हत्या करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों और इनको छोड़ खरे संदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराया गया है। यही धन्यवाद के योग्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सुपुर्द किया गया है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिन्होंने मुझे योग्यता दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे भरोसेमंद समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला और अन्याय करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने मात्र धार्मिक जोश में बिना समझे बूझे अज्ञानता के साथ ये काम किए थे। और हमारे महान प्रभु की कृपा उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, मुझ पर बहुतायत से हुई। यह बात सच और हर प्रकार से स्वीकार करने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को मुक्ति देने के लिए दुनिया में आए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। परंतु मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाएं, ताकि जो लोग उन पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक नमूना बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे और बुद्धिमान परमेश्वर का आदर और महिमा आने वाले सभी युगों तक होता रहे, ऐसा ही हो। हे बेटे तीमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तुम्हारे विषय में की गई थी, तुम्हारे लिए मेरा यह आदेश है कि तुम उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहो और विश्वास और उस अच्छे विवेक को संभाल कर रखो, जिसे दूर करने की वजह से कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हिमोनयुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान के सुपुर्द कर दिया है कि उन्हें परमेश्वर की निंदा न करने का पाठ सिखाया जाए। पहला तीमोथियुस अध्याय दो। अब मैं सबसे पहले यह विनती करता हूं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं, अधिकारियों और सब ऊंचे पद वालों के लिए, इसलिए कि हम शांतिपूर्वक और चैन के साथ सारी भक्ति और परमेश्वर के प्रति भययुक्त आदर के साथ जीवन बिता सकें। यह हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वो ये चाहते हैं कि सब मनुष्यों को मुक्ति मिले और वे सच्चाई को अच्छी तरह पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचौलिया है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य बने, जिन्होंने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, और इसकी गवाही सही समय पर दी गई। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसीलिए संदेश देने वाला, प्रेरित, अन्य जातियों के लिए ईमान और सच्चाई का उपदेशक ठहराया गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर कहीं मनुष्य बिना गुस्से और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। वैसे ही स्त्रियां भी शालीनता और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न के बाल गूंथने और सोने और मोतियों और कीमती कपड़ों से, लेकिन भले कामों से अपने आप को सजाएं। जो महिलाएं स्वयं को धर्मी और भले काम करने वाली समझती हैं, उनको यह वाजिब भी है। महिलाओं को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं यह भी कहता हूं कि महिलाएं न उपदेश करें और न पुरुष पर आज्ञा चलाएं, परंतु चुपचाप रहें, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया न गया, परंतु स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। लेकिन यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहें, तो बच्चों को जन्म देने के समय में सुरक्षा पाएंगी। पहला तीमुथियुस अध्याय 3। यह बात सच है कि जो देखरेख करने वाला बनना चाहता है, वह भले काम की इच्छा करता है। इसलिए चाहिए कि देखरेख करने वाला आरोप मुक्त और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, मेहमान नवाजी करने वाला और सिखाने में निपुण हो, शराबी या मारपीट करने वाला ना हो, पैसों का लोभी ना हो, बल्कि कोमल स्वभाव का हो, वह झगड़ालू और लालची भी ना हो, वह अपने घर का अच्छा इंतजाम करता हो और उसके बच्चे पूरी अधीनता के साथ उसका आदर करते हों। जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना न जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा? दूसरी बात यह है कि देखरेख करने वाला नया शिष्य न हो। ऐसा न हो कि घमंड से भरकर शैतान के समान सजा पाए। बाहर वालों के बीच उसकी गवाही अच्छी हो। ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। वैसे ही सेवकों को भी सम्माननीय होना चाहिए। वे दोरंगी, शराबी और पैसों के लालची न हो, लेकिन विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से संभालें। इन्हें भी पहले परखा जाए, उसके बाद यदि निर्दोष निकलें तो सेवक का काम करें। इसी प्रकार से उनकी पत्नियों को भी आदरणीय होना चाहिए, निंदा करने वाली नहीं, परंतु संयमी और सब बातों में विश्वास योग्य हों। सेवक एक ही पत्नी के पति हों और अपने बच्चों पर उचित निगरानी रखते हों और अपने घरों की जिम्मेदारी निभाना जानते हों, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर चुके हैं, वे लोगों से इज्जत पाते हैं और मसीह यीशु में उनके भरोसे के कारण उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। मैं तुम्हारे पास जल्दी आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि अगर मेरे आने में देर हो, तो तुम जान लो कि परमेश्वर के घर में, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और सत्य का खंबा और नींव है, उसमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि खरे जीवन का भेद गंभीर है, अर्थात परमेश्वर जो देह में आए, उनके वायदे पवित्र आत्मा के द्वारा सच ठहरे, स्वर्गदूतों को दिखाई दिए, गैर यहूदियों में उनका संदेश सुनाया गया, दुनिया में उन पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाए गए। पहला तीमुथियुस अध्याय 4। लेकिन आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में बहुत लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं के शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। वे पाखंड के साथ झूठ बोलेंगे। उनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। वे शादी करने से रोकेंगे और खाने की कुछ वस्तुओं से परहेज करने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले धन्यवाद के साथ खाएं। इसका कारण यह है कि परमेश्वर द्वारा बनाई गई हर वस्तु अच्छी है और कुछ भी अस्वीकार करने के लायक नहीं, यदि उसे शुक्रगुजारी के साथ खाया जाए, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। अगर तुम भाइयों को इस बारे में समझाते रहोगे, तो मसीह यीशु के अच्छे सेवक ठहरोगे और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से, जो तुम मानते आए हो, तुम्हारा पालन पोषण और विकास होता रहेगा। लेकिन अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से बचे रहो और पवित्र जीवन की ओर यत्न से बढ़ते जाओ, क्योंकि शारीरिक व्यायाम का लाभ सीमित है, पर पवित्र जीवन सब बातों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन का वायदा भी इसी में है। और यह बात सच और हर तरह से मानने के योग्य है। हम इसीलिए मेहनत करते हैं और निंदा सहते हैं, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जो सब लोगों के खासकर विश्वासियों के मुक्तिदाता हैं। इन बातों की आज्ञा दो और उन्हें सिखाते रहो। कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, लेकिन बातचीत, चाल चलन, प्रेम, आत्मा में विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए नमूना बन जाओ। मेरे आने तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लगे रहो। उस वरदान के विषय में जो तुम में है और भविष्यवाणी के द्वारा अगुओं के हाथ रखते समय तुमने पाया था, लापरवाह मत रहो। उन बातों को सोचते रहो और उन्हीं में अपना पूरा ध्यान लगाए रहो, ताकि तुम्हारी तरक्की सब पर प्रकट हो। अपने और अपने उपदेश के विषय में सावधान रहो। इन बातों में स्थिर बने रहो, क्योंकि अगर ऐसा करते रहोगे तो तुम अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी मुक्ति का कारण बनोगे। पहला तिमुथियुस अध्याय 5। किसी बूढ़े को न डांटो, लेकिन उन्हें पिता जानकर, जवानों को भाई जानकर और बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर समझा दो। जवान महिलाओं को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दो। उन विधवाओं को इज्जत दो जो सचमुच में विधवा हैं। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों, तो वे पहले अपने ही खानदान के साथ योग्य बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उचित आदर देना सीखें। यह परमेश्वर को अच्छा लगता है। जो सचमुच में विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है। वह रात दिन विनती और प्रार्थना में लवलीन रहती है, परंतु जो भोग विलास में पड़ गई, वह जीते जी मर गई है। इन बातों की भी आज्ञा दिया करो, ताकि वे निर्दोष रहें। यदि कोई अपनों की और विशेष करके अपने घराने की जरूरतों पर ध्यान न दे, तो वह विश्वास से हट गया है और अविश्वासी से भी अधिक बुरा है। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की न हो और एक ही पति की पत्नी रही हो, और भले काम में उसका अच्छा नाम रहा हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, मेहमानों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हों, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। लेकिन जवान विधवाओं के नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह की खिलाफत करके सुख विलास में पड़ जाती हैं, तो विवाह करना चाहती हैं और जीवन भर विधवा रहने के फैसले को तोड़ने की दोषी ठहरती हैं। इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं, और केवल आलसी ही नहीं, परंतु बकवास और बुराई करती रहती और दूसरों के काम में दखल अंदाजी करती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जवान विधवाएं विवाह करें और बच्चों को जन्म दें और घर की जिम्मेदारियां लें और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न दें, क्योंकि बहुत सी बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी हैं। यदि किसी विश्वासी या विश्वासिनी के यहाँ विधवा हो, तो वही उनकी मदद करे कि चर्च पर भार न हो, ताकि चर्च उनकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं। जो अगुए अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में मेहनत करते हैं, दो गुने आदर के योग्य समझे जाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दांवने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। यदि किसी प्राचीन पर दोष लगाया जाता है, तो बिना दो या तीन गवाहों के न सुनो। अपराध करने वालों को सबके सामने डांटो, ताकि और लोग भी डरें। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम मन खोलकर इन बातों को माना करो और कोई काम पक्षपात से न करना। किसी पर जल्दी हाथ न रखना और दूसरों के गुनाहों में भागी न होना। अपने आप को पवित्र बनाए रखो। भविष्य में केवल पानी ही पीने वाले न रहो, पर अपने पेट के खराब होने और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा अंगूर का रस भी काम में लाया करो। कितने मनुष्यों के बुरे काम प्रकट हो जाते हैं और इंसाफ के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ के साथ ऐसा नहीं होता, उनकी बुराई बाद में दिखती है। वैसे ही कितनों के भले काम भी दिखाई देते हैं, और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। पहला तिमोथियुस अध्याय 6। जितने लोग गुलामी के बंधन में हैं, वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा न हो। और जिनके स्वामी विश्वासी हैं, इन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, बल्कि उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि जिनकी सेवा की जा रही है वे यीशु को मानने वाले हैं और यीशु उनको चाहते हैं। इन बातों के बारे में उपदेश दिया करो और समझाते रहो। यदि कोई और ही तरह का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जिसमें सही चाल चलन की खास अहमियत है, तो वह व्यक्ति घमंडी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसमें विवाद और शब्दों पर तर्क करने का स्वभाव है। इस स्वभाव के कारण डाह और झगड़े और निंदा की बातें, बुरे बुरे संदेह और उन लोगों में बेकार के लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसे लोग जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और सत्य से खाली हो गए हैं, वे समझते हैं कि भक्ति कमाई का तरीका है, लेकिन शांति के साथ आत्मिक जीवन बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। लेकिन जो अमीर होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी बेकार की और नुकसानदायक वासनाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और बर्बादी के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि पैसों का लोभ सब तरह की बुराइयों की जड़ है, जिसे पाने की कोशिश करते हुए कई लोग विश्वास से भटक गए और अपने आप को तरह तरह के दुखों से पीड़ित कर दिया है। परंतु हे परमेश्वर के जन, तुम इन बातों से भागो और अच्छे चाल चलन, आराधना के जीवन, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करो। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो और उस अनंत जीवन को थामे रहो जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुम्हें परमेश्वर के, जो सब वस्तुओं को जीवन प्रदान करते हैं, और मसीह यीशु के सामने, जिन्होंने पुंतियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह हुक्म देता हूं कि तुम हमारे स्वामी यीशु मसीह के आने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रखो। इसे वह ठीक समयों में दिखाएंगे, जो परम धन्य और एकमात्र शासक और राजाओं के राजा और अधिकारियों के अधिकारी हैं, और अमरता केवल उन्हीं की है, और वह ऐसी रोशनी में रहते हैं जिन तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। न उन्हें किसी इंसान ने देखा है और न कभी देख सकता है। उनका मान सम्मान और राज्य युगान युग रहेगा, ऐसा ही हो। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दो कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर आशा रखें, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देते हैं। वे भलाई करें और भले कामों में अमीर बने, साथ ही साथ देने के लिए तैयार और सहायता करने में आगे हों। इस तरह से भविष्य के लिए वे अपना खजाना इकट्ठा करेंगे, जो कि एक मजबूत बुनियाद होगी, ताकि वे असली जिंदगी का स्वाद ले सकें। हे तिमोथियुस, जो शिक्षा तुम्हें सौंपी गई है उसके रखवाली करो, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवास और विरोध की बातों से दूर रहो। बहुत से लोग इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। तुम पर असीम कृपा बनी रहे।